लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी पीड़ितों को जीवन का रास्ता मिले तथा वे यीशु के पवित्रतम हृदय के स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं पर संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत युवाओं और विश्व की सारी कलिसिया के नाम, संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुन रहे हैं। क्रिस्तुस विवित का पांचवा अध्याय युवाओं की राहों के बारे में जिक्र करता है। इस अध्याय के अपने पिछले प्रसारण में हमने युवाओं की प्रौढ़ता में विकास का जिक्र किया था, जिसकी चर्चा हम आज भी जारी रखेंगे। संत पापा युवाओं को अपने संबोधन में इस बात की आशा करते हुए कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि आप अपनी आध्यात्मिकता में बढ़ने हेतु गंभीरता से एक प्रयास करेंगे। युवा काल की अन्य सभी आकर्षित करने वाली चीजों के साथ हमें धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति को भी खोजने की जरूरत है। इसके द्वारा आप अपने जीवन में अपनी सहजता, साहस, उत्साह और कोमलता जैसी कुछ भी चीजों को नहीं खोते हैं। व्यस्त होने का अर्थ आपके लिए यह नहीं कि आप जीवन की सर्वोत्तम चीजों को खो दें। यदि ऐसा होगा तो ईश्वर आपको फटकारेंगे। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ इसकी चर्चा करते हुए कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तू मुझे नववधु की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में, बंजर भूमि में मेरे पीछे पीछे चलती थी। व्यस्कों को चाहिए कि वे अपने जीवन काल के मूल्यों को खोए बिना प्रौढ़ता को प्राप्त करें। जीवन का हर एक मोड़ हमारे लिए एक स्थायी कृपा है, जहां हम एक स्थायी मूल्य को पाते हैं। युवा काल की अनुभूतियां, जिन्हें हम उचित रूप में जीते, जो हमारे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाती हैं, यह हमारे पूरे जीवन में विकसित होती जाती और हमारे पूरे प्रौढ़ता में फलहित होती हैं। युवा जन अपने में स्वाभाविक रूप से उस अनंत क्षितिज की ओर आकर्षित होते हैं जो उनके लिए खुली होती है। प्रौढ़ जीवन काल में अपनी सुरक्षा और आराम के कारण आप युवा काल के क्षितिज और उत्साह को खोने की जोखिम में पड़ सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ठीक इसके विपरीत यह आवश्यक है कि हम जैसे जैसे प्रौढ़ता को प्राप्त करते, जीवन में बड़े होते और इसमें सुव्यवस्थित होते जाते, तो हमें अपने जीवन की सच्चाई को लेकर और उसके प्रति खुले रहने के संबंध में अपने उत्साह को कभी नहीं खोने देना है। हमारे जीवन के हर कदम में हम अपने युवा काल को नवीकृत कर सकते हैं। संत पापा स्वयं अपने बारे में कहते हैं कि जब मैंने संत पापा के रूप में कलिसिया के प्रेरितिक कार्यों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, ईश्वर ने मेरे जीवन की क्षितिज को और भी विस्तृत कर दिया और मुझे युवा बने रहने की कृपा से नवीकृत किया है। यही बातें आप सबों के लिए भी लागू होती हैं, जो सालों से वैवाहिक दंपत्य जीवन या मठों में मठवासी समर्पित जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें और चीजें हैं, जिन्हें हम समय के साथ अपने से जाने देने हेतु सीखने की जरूरत है। लेकिन प्रौढ़ता में विकास हमारे लिए एक आग की तरह धधकती जाती है, जहां हम अपने में सदैव युवा बने रहते हैं।
चलो, बड़ी चलो, बड़ी चलो, ओ,
श्रोताओं, उम्र में विकास करने का अर्थ है अपने में युवा काल के कीमती बातों को यादगारी के रूप में धारण किए रखना और उसका रसा स्वादन करना। लेकिन यह अपने में इस बात को भी सम्माहित करती है कि हम अपने जीवन में उन बातों को परिशुद्ध करें जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हम ईश्वर से अपने लिए नए उपहारों को स्वीकार करें जिससे हम उन बातों में अपने को विकसित कर सकें जो हमारे लिए सचमुच जरूरी हैं। कभी कभी एक निश्चित हीन भावना आपको अपनी खामियों और कमजोरियों को नजरअंदाज करा सकती है जो आपको अपनी प्रौढ़ता में विकसित होने में बाध्य होता है। इसके बदले आप अपने को ईश्वर को प्रेम करने दें, क्योंकि आप जैसे भी हैं ईश्वर आपको उसी रूप में प्रेम करते हैं। वे आपका सम्मान करते और आपको महत्व देते हैं। वे आपको और अधिक अपने कृपाओं से विभूषित करते हैं। वे आपको अपनी मित्रता का साथ देते, प्रार्थना और उनके वचनों के प्रति चाह, जहां आप यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में ग्रहण करने हेतु और अधिक आतुर होते हैं, जिसके फलस्वरूप आप में सुसमाचार के अनुरूप जीवन जीने की उत्कंठा जागृत होती है। वे आपके हृदय में और अधिक आंतरिक शक्ति, अधिक शांति तथा और अधिक आध्यात्मिक खुशी का संचार करते हैं। संत पापा युवाओं को सचेत कराते हुए कहते हैं कि आप दूसरों की छाया प्रति बनने की कोशिश करते हुए अपने जीवन में पवित्र और पूर्णता की अनुभूति नहीं करेंगे। संतों की जीवन शैली का अनुसरण करना और उनके पवित्र जीवन के अनुसार अपने जीवन का संचालन करना उनके जीवन को अपने में छाया प्रति करना नहीं है। हमारे लिए कुछ साक्ष्य हैं जो हमारे लिए सहायक और प्रेरित करने वाले लगते हैं, लेकिन वे हमारे लिए हूबहू उपयोग में लाने हेतु नहीं है, क्योंकि वे भी हमें अपने एक विशिष्ट जीवन से दूर कर सकते हैं जो हमारे लिए ईश्वर की योजना में है। आपको अपने में यह पता लगाने की जरूरत है कि आप कौन हैं। आपको स्वयं अपने लिए पवित्रता का मार्ग विकसित करने की जरूरत है, चाहे दूसरे आपको इसके बारे में कुछ भी बोलें या कुछ भी सोचें। संत होने का अर्थ अपने को पूरी तरह वह बना लेना है जो आप स्वयं हैं। आपको ईश्वरीय नजरों और सपनों के अनुरूप वह बना लेना जिससे वे आपको बनना चाहते हैं, ना कि दूसरों को अपने जीवन की छाया प्रति बनाना। आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा प्रद होना चाहिए जो दुनिया के लिए एक छाप छोड़ती हो, वह अभूतपूर्व निशानी जिसे केवल आप ही छोड़ सकते हैं। वहीं यदि आप अपने जीवन में दूसरों की छाया प्रति बनते तो आप इस पृथ्वी को और स्वर्ग को भी उन बातों से वंचित करते हैं जिसे केवल आप ही प्रदान कर सकते हैं। संत पापा कहते हैं कि मैं क्रूस के संत योहन की याद करता हूँ जो अपने आध्यात्मिक गीत में लिखते हैं, जो कि हमारे लिए आध्यात्मिक सलाह स्वरूप है। ईश्वर हम में से हर एक के लिए व्यक्ति विशेष अनुरूप, हमारे लिए हमारे अनुरूप तो दूसरे के लिए उसके अनुरूप अपनी कृपाओं को प्रकट करते हैं। संत पापा कहते हैं कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के विकास की झलक हमारे भ्रातृत्व, उदारता और करुणामय प्रेम में झलकती है। संत पौलुस प्रथम थिस्सलुनीकियों के नाम अपने पत्र के अध्याय 3 के पद 12 में प्रार्थना करते हुए इसे कहते हैं, प्रभु ऐसा करे जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबके प्रति बढ़ता और उमड़ता रहे। आप अपने से बाहर निकलते हुए और दूसरों की भलाई चाहने वाले इस परमानंद का अनुभव करें जो अपने में कितना अद्भुत है, जहां हम अपने जीवन को बलि अर्पित करने को भी तैयार हो जाते हैं।
आगे बढ़ते रहना है, कहीं भी नहीं रुकना है। आप वाटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने पीड़ित एवं असहाय लोगों की मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने 16 जून के ट्वीट संदेश में लिखा, प्रभु हमसे आग्रह करते हैं कि हम याद करें, सुधारें एवं पुनर्निर्माण करें और एक साथ ऐसा करने में हम पीड़ित लोगों को ना भूल जाएं। 15 जून को बुजुर्गों के दुर्व्यवहार पर विश्व चेतना दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है उनके प्रति हो रहे दुर्व्यवहार के प्रति जागरूकता लाना तथा उनके मानवाधिकार और प्रतिष्ठा की रक्षा करना। संयुक्त राष्ट्र के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान अनुसार 60 साल से अधिक उम्र के हर 6 में से एक बुजुर्ग दुर्व्यवहार का शिकार है। इसका अर्थ है कि विश्व में करीब 141 मिलियन लोग इसके शिकार है। यह संख्या बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार एक छिपी हुई एवं सबसे कम रिपोर्ट की गई अतिक्रमण है। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञ क्लाउडिया मेहलर ने बुजुर्ग लोगों के मानवाधिकार के लिए आवाज उठाते हुए सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से अपील की है कि वे शारीरिक एवं मानसिक दुर्व्यवहार तथा बहिष्कार से बूढ़े लोगों की रक्षा करने के लिए वैश्विक एकात्मक एवं ठोस कदम उठाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह एकल या बार बार किया जाने वाला कृत्य या उचित कार्रवाई का अभाव है, जो किसी भी रिश्ते के भीतर जहां विश्वास की उम्मीद होती है बुजुर्ग व्यक्ति को नुकसान या संकट का शिकार बनाता है। बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार विभिन्न तरह से हो सकते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, यौन अथवा आर्थिक। यह अनजाने अथवा जानबूझकर बहिष्कार के कारण भी हो सकता है। मेहलर ने सोमवार को बुजुर्गों के दुर्व्यवहार पर विश्व चेतना दिवस पर संदेश में कहा, जब बुजुर्ग कोविड-19 से बहुत अधिक प्रभावित हैं, उनकी आवाज, विचार एवं उनकी चिंता को अनसुनी कर दिया जाता है। संदेश में उन्होंने कहा है कि बुजुर्ग जितनी संख्या में विश्व में तेजी से घरों, अस्पतालों एवं संस्थाओं में मर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बुजुर्ग लोगों का जिक्र करते हुए क्रूर एवं अमानवीय भाषा का प्रयोग निराशाजनक है। मेहलर आवाज उठाना चाहती है कि हिंसा, दुर्व्यवहार और तिरस्कार न केवल खुले में होते हैं, बल्कि बहुत बार यह समाज में अदृश्य होता है। समाज को बुजुर्ग लोगों के प्रति मौखिक दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। उनके खिलाफ हो रहे हर प्रकार के हिंसा को दूर करने के लिए विचार विमर्श में शामिल किया जाना चाहिए। संत पापा ने कई अवसरों पर बुजुर्गों के महत्व और उनकी रक्षा पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। इटली में कोविड-19 तालाबंदी के दौरान संत पापा ने 15 अप्रैल को बुजुर्गों के लिए ख्रिस्त्याग अर्पित किया था, विशेषकर उन लोगों के लिए जो महामारी के कारण अकेले छोड़ दिए गए थे। उन्होंने कहा था, कई लोग अकेले मरने के लिए भयभीत हैं, किंतु वे हमारे मूल हैं, हमारी कहानी और हमारे इतिहास। उन्होंने उनके लिए प्रार्थना करने हेतु सभी को निमंत्रण दिया था कि प्रभु ऐसे समय में उनके साथ रहें। संत पापा ने 4 मार्च 2015 को आम दर्शन समारोह के दौरान कहा था कि बुजुर्गों को दरकिनार करना और उन्हें छोड़ देना क्रूर बात है, एक पाप है। उन्होंने संत पापा बेनेडिक्ट 16वें की याद की थी, जो कहा करते थे कि एक समाज की गुणवत्ता अर्थात उसकी सभ्यता को उसके बुजुर्गों के साथ व्यवहार एवं सामुदायिक जीवन में उन्हें स्थान देने के द्वारा परखा जाता है। संत पापा ने फेंकने की संस्कृति को उजागर करते हुए उससे घिनौना कहा था जो उन लोगों का बहिष्कार करता जिनसे कोई लाभ या फायदा मिलने की उम्मीद नहीं होती है। लंदन में निवेश की संपत्ति को कुप्रबंधित रियल स्टेट सौदा के संबंध में वैटिकन द्वारा आरोपित इटाली दलाल को जेल से रिहा कर दिया गया है। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि वैटिकन राज्य सचिवालय से संबंधित फंड से जुड़े लंदन में एक इमारत की खरीद और बिक्री के लिए वार्ता के अंतिम चरण में शामिल दलाल जान लुइजी तोत्सी को बेल पर जेल से रिहा कर दिया गया है। तोत्सी को 5 जून को गिरफ्तार किया गया था और उन पर जबरन वसूली, गबन, धोखाधड़ी और काले धन को वैध बनाने का आरोप था। द्वितीय वैटिकन महासभा के दस्तावेज नोस्ट्राए ताइटे ने विभिन्न धर्मों के साथ संवाद के द्वार को खोल दिया है। द्वितीय वैटिकन महासभा के धर्माचार्यों ने द्वितीय वैटिकन महासभा की घोषणा नोस्ट्राए ताइटे को अनुमोदन दिया था और संत पापा पॉल छठवें ने 28 अक्टूबर 1965 को इसे प्रकाशित किया था, जो कैथोलिक कलीसिया एवं यहूदी धर्म के बीच जॉन 23वें द्वारा उठाए गए कदमों के मद्देनजर एक अपरिवर्तनीय मोड़ से और गैर ख्रिस्ती धर्मों के लिए कैथोलिक धर्म के दृष्टिकोण को काफी बदल दिया। इससे अन्य धार्मिक विश्वासों के द्वारा संवाद हेतु एक मूल दस्तावेज माना जाता है। दस्तावेज के केंद्र में यहूदी धर्म के विषय में कहा गया है कि कलीसिया के रहस्य की जांच करते हुए महासभा उस संबंध को याद करती है जिसके साथ नए नियम के लोग आध्यात्मिक रूप से अब्राहम के वंश के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए ख्रिस्तियों एवं यहूदियों के बीच बड़ी आध्यात्मिक समानता होने के कारण यह महासभा उनके बीच आपसी ज्ञान और सम्मान को बढ़ावा देना एवं सिफारिश करना चाहती है, जो सबसे बढ़कर बाइबल एवं ईश शास्त्रीय अध्ययन एवं एक भ्रातृ समाज से प्राप्त होते हैं। यूरोप में सुरक्षा एवं सहयोग संगठन के लिए परम धर्म पीठ के स्थायी प्रतिनिधि ने कोविड 19 महामारी के बीच भ्रष्टाचार के निराकरण का आह्वान किया है। यह देखते हुए कि सभी मौजूदा विचार विमर्श कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं, मोनसिन्योर जानुस उर्बन सिंजक ने कहा, हमने पहले ही इस संकट के कारण अपने क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों को देखना शुरू कर दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। मोनसिन्योर जानुस सोमवार को 28वीं आर्थिक एवं पर्यावरण मंच की तैयारी हेतु दूसरी सभा के दौरान अपना वक्तव्य पेश कर रहे थे। मंच की विषय वस्तु थी OSCE के क्षेत्र में नवाचार, पारदर्शिता एवं डिजिटलाइजेशन को बढ़ाकर भ्रष्टाचार का सामना करने एवं उसे दूर करने के द्वारा सुरक्षा, स्थायित्व और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। सभा कोविड 19 महामारी के कारण वर्चुअल जूम के द्वारा की गई। अपने संबोधन में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग के संगठन के लिए परम धर्म पीठ के स्थायी प्रतिनिधि ने सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।